जयधवला पुस्तक 14 लेक्चर नंबर 19 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सौवसाहूरम् उवसमिदसयलदोषे उवसन्तकसाय वीरायन्ते उवसामये पणम्यूं कसाय उवसामणं होच्छं। यह श्री वीरसेन आचार्य की जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा छोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 14वीं पुस्तक में अभी हम चारित्र मोह की उपशामना नाम का अर्थाधिकार देखते हुए पृष्ठ संख्या 120 पर आ गए। 120 यहाँ उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरने वाला, अपूर्वकरण के शुरू से लेकर उतरने वाले अपूर्वकरण के अंत तक जो अल्प बहुत्व है काल के, उसकी बात यहाँ बताने जा रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं ये अल्प बहुत्व यहाँ से शुरू हो जाता है। पृष्ठ संख्या 120 वहाँ पढ़ते हैं कि सौवत्थोवा जहन्या अनुभाग खंडय उत्कीर्णधा। ये काल की बात है, अनुभाग कांडक धात होने के लिए जितना काल लगता है उसको अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल कहते हैं। अब कहीं पर वो काल बड़ा है कहीं पर छोटा है, तो कहते हैं जघन्य उत्कीर्ण काल है वो सबसे अल्प है। वो कहाँ होता है उसकी बात करेंगे, परंतु पहले में पहले सबसे छोटा काल कौन सा है? जघन्य अनुभाग उत्कीर्ण काल, कांडक उत्कीर्ण काल। ये हिंदी में पढ़ेंगे सूत्र, अनुभाग कांडक का जघन्य उत्कीर्ण काल सबसे थोड़ा है। उत्कीर्ण भी लिखेंगे, उत्कीर्णा भी लिखेंगे और कांडकोत्करण भी लिखेंगे, यानी उत्करण भी आ जाएगा वहाँ शब्द। हमने बहुत जगह कांडकोत्करण काल देखा था और यहाँ कांडक के उत्कीर्ण काल भी लिखा है। अभी आगे उसका जो स्पष्टीकरण है उसको देखेंगे हम। क्योंकि श्रेणी पर चढ़ने वाले सूक्ष्म सांप्रायिक के ज्ञानावरणादि कर्मों का जो अंतिम समय संबंधी अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल होता है, और मोहनीय कर्म का अंतर करने पर जो वहां संबंधी अंतिम अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल होता है, उन दोनों को यहाँ ग्रहण किया है। क्या कहना चाहते हैं? मोहनी का अनुभाग कांडक घात कहाँ पर रुक जाते हैं तो अंतर समाप्ति होती, अंतर करने का काल समाप्त होता है उसी समय उसका अंतिम अनुभाग कांडक घात भी वहाँ हो जाता है। उसके बाद ना स्थिति कांडक होते हैं ना अनुभाग कांडक होते हैं। अंतरकरण पूर्ण होने के पश्चात मोहनी कर्मों के स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात बंद हो जाते, होना बंद होता है, परंतु ज्ञानावरणादि अन्य कर्मों में चलता रहता है, आयु में तो कुछ नहीं होता है। अन्य कर्मों में यह स्थिति कांडक घात भी और अनुभाग कांडक भी होता रहेगा। तो कहाँ तक होता है? कहाँ तक होगा? सूक्ष्म सांप्राय के अंत तक। तो ज्ञानावरणादि कर्मों में वो जघन्य उत्कीर्ण काल कहाँ वाला लेना है? सूक्ष्म सांप्राय के अंत में वाला। और मोहनी के बारे में कहाँ का लेना है? तो अंतरकरण करते समय वहां जो अंत में हुआ था वो लेना। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी, फिर भी यहाँ जघन्य है इतना ही बता दिया, परंतु अन्य अन्य कर्मों का स्वामित्व वाला जो है किस पॉइंट पर उसका जघन्य होता है उसकी बात यहाँ बता दी।
तो मतलब
तभी करण बंद हो गया ना, तभी तो पूर्ण उपशमित कहलाएगा उसको। हम वहाँ कहाँ पर की बात कर रहे हैं आप?
भूमि का जो अंतकरण करने के बाद
अपकर्षण बंद नहीं हुआ है, क्योंकि द्वितीय स्थिति में से अपकर्षण होकर तो प्रथम स्थिति में आ ही रहे, बार बार अपकर्षण चालू है, संक्रमण भी चालू है। यहाँ तो केवल उसके स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात बंद हो गए। नौवा है, संख्या बहुभाग बीत गया है, अंतर किया है उसने, अभी सभी कर्मों का उपशम बाकी है, ऐसी अवस्था में है वो। उस पॉइंट पर अब स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात नहीं हो गए। ये कांडक घात से क्या होता है, स्थिति सत्व जो था वो बहुत फास्ट उसका घात होके वो कम होते चला जाता, अब इसके आगे वो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अंतर करने के बाद उपशांत का चलता है कार्य पूरा है। अंतर करने के बाद पहले नपुंसक वेद को उपशमाएगा, फिर श्रीवेद को, फिर सात नौकशायन को, इस तरह से क्रम से क्रोध मान माया लोक को। हाँ, बाकी सब केवल निधत्ति निकाचन और वो तीन करण बंद हुए हैं, बाकी यहाँ अनुपूर्वी संक्रम यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी लोभ में नहीं है कहेंगे, बाकी सब में चल रहा है, अपकर्षण भी चल रहा है। जहाँ बंद होगा वहाँ उस मात्रा में उत्कर्षण भी होगा, उदीर्णा अपने अपने योग्य काल तक उदीर्णा भी होगी, क्योंकि अपकर्षण हो रहा है तो जिसका उदय है उसकी उदीर्णा भी यथा योग्य काल तक रहेगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये अल्प बहुत्व शुरू हुआ है उसका ये पहला पॉइंट है। अनुभाग कांडक का जघन्य उत्कीर्ण काल सबसे अल्प है, ये पहला नंबर देना वहां पर। अब दूसरे नंबर पर देखेंगे हम, उपकस्य अनुभाग खंडय उत्कीर्णद्धा विशेष आहिया, अनुभाग कांडक का उत्कृष्ट उत्कीर्ण काल विशेष अधिक है। ये कब होगा, तो जहां से शुरुआत की थी अपूर्व कर्म के शुरू में वहां होगा, क्योंकि श्रेणी पर चढ़ने वाले अपूर्व करण के सभी कर्मों संबंधी, देखो जघन्य के बारे में उसको अलग अलग पॉइंट पर उसका जघन्य था, मोहनीय का था अंतर करने के काल में, और अन्य कर्मों का था सूक्ष्म सांप्राय के अंत में। अब उत्कृष्ट की बात आई है तो सभी के अपूर्व करण के शुरू में, चढ़ने वाले के शुरुआत में जो उन्होंने वहां पर स्थिति कांडघात, अभी अनुभाग की बात है, अनुभाग कांडघात किया था, वो है उत्कृष्ट उत्कीर्ण काल। यानी अनुभाग कांडक होने के लिए जितना काल लगा उसकी बात है, तो वो विशेष अधिक है, संख्यात गुणा वगैरह नहीं कहा, विशेष अधिक कह दिया। और ये कैसे है, अपूर्वकरण चढ़ने वाले अपूर्वकरण के, अपूर्वकरण के यानी अपूर्वकरण वाले जीव के सभी कर्मों संबंधी, ज्ञानावरणादि सभी लेना, मोहनीय के और अन्य कर्म सभी की, प्रथम अनुभाग कांडक के उत्कीर्ण काल का यहाँ ग्रहण किया है। वहाँ जो पहले अनुभाग कांडक घात किया था, वो घात होने के लिए जितने काल लगा था अंतर्मूर्त, वो विशेष अधिक है, जघन्य की अपेक्षा ये विशेष अधिक है। ये दूसरा हुआ। हाँ, यहाँ सबके लिए समान है, वहाँ अलग अलग पोजीशन पर था वो। अब तीसरा नंबर देंगे, जहन्निया ठिदिबंध गद्धा ठिदिखंडय उत्कीर्णद्धा च तुल्लाओ संख्ये जगुणाओ, जघन्य स्थितिबंध काल और जघन और स्थितिकांडक उत्कीर्ण काल, यहाँ भी जघन्य समझ लो, स्थितिकांडक का जघन्य उत्कीर्ण काल दोनों समान होकर संख्यात गुणे। यह नियम सर्वत्र है, एक स्थितिकांडक घात होने के लिए जितना काल लगता है उतने काल तक, उतने अंतर्मूर्त तक जो वहाँ का स्थितिबंध है वही का वही चलता है, फिर जाके स्थितिबंध का प्रमाण वहाँ घटता चला जाएगा। तो उसको, उसी काल को हम स्थितिकांडक उत्कीर्ण काल भी कहेंगे, या स्थितिबंध काल भी कहेंगे, या स्थितिबंध अपसरण काल भी कहेंगे, कुछ भी कहे अर्थ एक ही है उसका। यानी स्थितिबंध का अपसरण कितने कितने काल के पश्चात होता है उसको स्थितिबंध अपसरण काल कहेंगे, या उतने काल तक समान स्थितिबंध होता रहा इसलिए उसको स्थितिबंध काल भी कहेंगे। यानी यहाँ पर एक स्थिति बंधापसरण हुआ, दूसरा स्थिति बंधापसरण यहाँ हुआ, तो बीच वाले काल में क्या रहा था, उतना का उतना स्थिति बंध हो रहा था, तो उसको स्थिति बंधापसरण का काल कहो, स्थिति बंध का काल कहो, और उतने ही काल में एक स्थिति कांडक घात होता है, इसलिए उसी काल को स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल भी कहेंगे। तीन हो गए। हाँ, तो यहाँ जघन्य स्थिति बंध काल की और जघन्य स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल की बात चल रही है। यहाँ भी उत्कीर्ण काल है, नवे के अंतर नहीं है। स्थिति कांडक कहाँ होता है? देखो यहाँ हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा आपको। जघन्य स्थिति बंध काल और स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल दोनों समान होकर संख्यात गुण है, दोनों को समान कहा है, तो जहां पर वो कांडक घात होता था वहीं पर लेना पड़ेगा। तो देखो, अनिवृत्तिकरण की अंतिम अवस्था संबंधी मोहनीय के जघन्य स्थितिबंध काल को ग्रहण करना चाहिए, यानी मोहनीय का जघन्य स्थितिबंध कहां पर होता है, तो अनिवृत्तिकरण के अंत में, क्योंकि उसके आगे उसकी बंध विच्छिति देखी जाती है। परंतु यहां पर मोहनीय कर्म संबंधी स्थिति कांडक का जघन्य उत्कीर्ण काल नहीं होता, क्योंकि अंतरकरण करने के बाद आगे मोहनीय कर्म का स्थितिघात असंभव है। सभी कर्मों के सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान की अंतिम अवस्था में तो ये दोनों ही जघन्य ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि वही पर ये दोनों जघन्य रूप से उपलब्ध होते हैं, और ये पहले के पद से संख्यात गुणे होते हैं, यह असिद्ध भी नहीं है। पहले का पद कौन सा था? अनुभाग कांड का उत्कृष्ट उत्कीर्ण काल, उससे ये संख्यात गुणे क्यों कहेंगे? क्योंकि एक स्थिति कांडक घात के काल में हजारों तो अनुभाग कांडक घात होते हैं, इसलिए उसके हजार गुणा कह दो ना हम, यानी संख्यात गुणा होता है, ये बात सिद्ध होती है। क्योंकि सबसे जघन्य एक स्थिति कांडक के उत्कीर्ण काल के भीतर भी संख्यात हजार अनुभाग कांडकों के उपदेश के बल से वे संख्यात गुणे हैं, यह सिद्ध होता है। ये वाक्यों की जो रचना इसी अटपटी है, उसका अर्थ केवल हमें समझना चाहिए कि जघन्य स्थिति बंध और जघन्य अनुभाग का सॉरी स्थिति कांडक घात का काल कहाँ पर होगा? अन्य कर्मों के लिए सूक्ष्म सांप्राय के अंत में होगा। मोहनीय के बारे में कहाँ होगा? तो जघन्य स्थिति बंध तो अनिवृत्तिकरण के अंत में होगा, और जघन्य स्थिति कांडक घात तो अंतर के अंत में होगा। वहां तो डिफरेंस होगा, फिर भी वो पहले से वो संख्यात गुणे, ये बात सिद्ध होती। अब आगे पढ़ेंगे हम चौथे नंबर पर, पहले भी प्राकृत पढ़ लेते हैं। हाँ, ये सूक्ष्म सांप्राय के अंत में होता है, वहां तक होता है। हाँ, वहां तो उसके परिणाम एक तरीके हैं। और बंद भी नहीं है वहां पर उसका, स्थिति का बंद नहीं है ना अनुभव का है, बंद ही नहीं है, ज्ञानावरणादि का बंद ही नहीं है, केवल स्थिति का नहीं, ऐसा नहीं। अभी आगे देखते हैं हम ऊपर प्राकृत में, परिवद माणगस्त जहन्या ठिलिबंध गद्धा विशेष हिया। श्रेणी से गिरने वाले जीव का जघन्य स्थितिबंध काल विशेष अधिक है। उतरने का टाइम कम लिया था, स्थितिबंध का देखो, गिरने वाले जीव का जघन्य स्थितिबंध लगातार कितने काल तक चलेगा उसकी बात है, उसकी बात चलेगी। तो उतरने वाले सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के यह ज्ञानावरणादि संबंधी प्रथम स्थिति बंध विषय लेना चाहिए। मोहनीय कर्म का तो श्रेणी से उतरने वाले अनिवृत्ति कर्म संबंधी प्रथम स्थिति बंध विषय लेना चाहिए, वहां पर उसका होगा स्थिति बंध, क्योंकि नवे में आने पर मोहनीय का बंध होने लगता है। और पूर्व के स्थिति बंध काल से यह विशेष अधिक यह असिद्ध भी नहीं है, यह उल्टा वही लिया है, बड़ा ही लिया है, क्योंकि चढ़ने वाले स्थितिबंध काल से, स्थितिबंध काल की बात है, उतरने वाला स्थितिबंध काल संकलेश के महात्म्यवश विशेष अधिक सिद्ध होता है, इसमें कोई बाधा नहीं पाई जाती। साथ ही प्रकृत सूत्र के इस निर्देश से इस प्रकार भी जाना जाता है कि श्रेणी से उतरने वाले के सब अवस्थाओं में स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता। स्थितिबंध काल का समय ज्यादा है, स्थितिबंध काल का समय ज्यादा है। पूरे हमने पहले देखा था, एक बार जो कुछ ऐसा लिखा है अन्य, तो हमने ये इस निर्णय पर आए थे कि पूरा काल है वो उतरने वाले का छोटा होगा, छोटा। अब यहाँ क्या लिखा है, केवल स्थिति बंध को लिया है, पहले सूत्र में स्थिति कांडक को भी साथ में लिया था। देखो तीसरे पॉइंट पर जघन्य स्थिति बंध काल और जघन्य स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल लिया था, और यहाँ उतरने वाले में जघन्य स्थिति बंध काल इतना ही लिया, क्योंकि उतरते समय स्थिति कांडक घात नहीं होते। उतरने वाले के स्थिति कांडक घात नहीं होते, स्थिति हाँ यहाँ कम हो रही है, संकलेश की ओर बढ़ रहा है, वो संकलेश का महत्व नहीं है कांडक घात, क्योंकि उतरते समय भी कांडक घात होने लगे तो क्या होगा। जैसे स्थिति बंध अभी बढ़ता चला जाता है, कांडक घात पहले चढ़ते समय होते थे, अभी नहीं होंगे। चढ़ते समय जितना कांडक घात किया उतना हुआ। देखो यहाँ लिखा है पृष्ठ संख्या 122 पर चौथी लाइन, साथ ही मिला ना, प्रकृत सूत्र के इस निर्देश से, इस कथन से इस प्रकार भी जाना जाता है कि श्रेणी से उतरने वाले के सब अवस्थाओं में यानी कहीं पर भी स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता। सब अवस्थाओं में यानी कहीं पर भी, यदि होता तो उतरने वाले के स्थितिबंध काल के साथ स्थितिकांडक उत्कीर्ण काल भी कहते, अन्यत्र तो स्थितिबंध काल के साथ उत्कीर्ण काल को भी लिया है, परंतु यहाँ अकेले स्थितिबंध काल की बात की है। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस प्रकार उसका उपदेश पाया नहीं जाता, यानी उतरते समय स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात नहीं होते। अब आगे देखते हैं, अंतरकरणद्धा विशेषाय, अंत अध्ययन काल, अंतरकरण करने के लिए जितना काल लगा उसकी बात है, तो अंतरकरण काल विशेष अधिक है। किससे लिया, उतरने वाले के, हाँ उतरने वाले का जो हमने देखा था, उतरने वाले का जघन्य स्थितिबंध काल देखा था, तो उतरने वाले का जो जघन्य स्थितिबंध काल देखा था उससे ये अंतरकरण करने का काल तो बीच में आ गया ना, तो वो विशेष अधिक। यह अंतर फालियों का उत्कीर्ण काल ग्रहण किया, अंतर फाली यानी अंतरकरण करने का काल, कितने आयाम में अंतर किया वो नहीं, अंतर का आयाम नहीं कह रहे हैं,
किया।
देखो एक है अंतर आयाम, अंतर का जो आयाम है वो कितने निषेकों का नाश करके गैप किया उसको कहेंगे अंतर का आयाम, और ये अंतरकरण करने का काल है, जो एक अंतर्मूर्त प्रमाण होगा, छोटा सा होगा अंतर्मूर्त, उतने काल में एक फाली उसका अंतर किया, फिर और कुछ फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, चौथी फाली, वह जो छोटा काल है इसका, उतनी फालियां होगी उतने समय होंगी। तो यह अंतर फालियों का उत्कीर्ण काल ग्रहण किया है, एक एक फाली रूप से अंतर किया जाएगा, सभी परमाणु एक साथ उसका अंतर नहीं मिटता, तो एक समय में कुछ परमाणु उसका अंतर हो गया, फिर दूसरे हर एक निषेक में से कुछ कुछ परमाणु का अंतर हो गया, यानी वो वहां से ऊपर नीचे जहन कहीं यथायोग्य डालेंगे। और यही वहां संबंधी स्थितिबंध काल और स्थितिकांडक उत्कीर्ण काल भी है। वहां संबंधी ने जितना अंतरकरण करने का काल था, उस पोजीशन पर, उसी पॉइंट पर एक स्थितिकांडक घात भी हुआ था और उसी पॉइंट पर एक स्थितिबंध काल व्यतीत हुआ था। तो ये तीनों समान है। अंतर करने का काल वहां पर होने ने, उस पोजीशन पर होने वाला स्थितिकांडक का काल और उसी पोजीशन पर होने वाला स्थितिबंध का काल, तीनों समान है। पूरे अंतर करने के काल तक एक ही स्थितिबंध है, पूरे अंतर करने के काल तक एक ही स्थितिकांड घात हो रहा है, और वो तीनों एक साथ शुरू हुए और एक साथ बंद हुए। एक ही अंतर करने का जो काल है उसको कांडक उत्करण नहीं कहेंगे, अंतर कांडक नहीं हुए। फाली तो वर्टिकल लेना, कांडक तो हम इसे टुकड़े टुकड़े लेते हैं। एक ही होता है, एक ही अंतर मुहूर्त में पूरा अंतर किया जाता है। ये ऐसे निषेक क्रम से थे। अब नीचे के कुछ निषेक छोड़े, ऊपर के कुछ निषेक छोड़े, बीच वाले जो है इनका अंतर किया। अंतर किस रूप से किया? तो पहले समय में उसकी एक फाली गई, गई ने क्या ऊपर या नीचे के निषेकों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, री डिस्ट्रीब्यूशन। फिर दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में ऐसे एक अंतर मुहूर्त में यहाँ अंतर किया गया। इस पोजीशन पर जीव है, यहाँ के परिणामवश ऊपर के कुछ निषेक प्रथम स्थिति रूप से छोड़कर उसके ऊपर अंतर किया। अब यहाँ उसको करने के लिए कितना काल लगा, तो मान लेते इतना काल लगा। इतने ही काल में यहाँ का उसने स्थितिकांडक घात किया, ये अंतिम स्थितिकांडक घात है उसका, द्वितीय स्थिति, क्योंकि स्थिति जितनी है सप्ताह में उसके अंत में होता है कांडक। तो यहाँ के कुछ निषेकों के परमाणु नीचे आ जाएंगे और इनका घात किया जाएगा, वो भी एक फाली, दो फाली, तीन फाली, इस तरह से। तो यहाँ का स्थितिकांडक घात, यहाँ लगातार होने वाला बंध का काल और अंतर करने का काल, तीनों समान है। वो इस पोजीशन पर हम दिखा रहे हैं। अंतर तो यहाँ किया ऊपर, अंतर बहुत बड़े आयाम में किया है, वो करने के लिए काल बहुत छोटा अंतर मुहूर्त लगा। उतने काल में यहाँ का एक स्थितिकांडक घात हुआ, दूसरी स्थिति में होता है ना स्थितिकांडक घात, तो टॉप मोस्ट निषेकों का होता है, वो भी एक फाली, दो फाली, तीन फाली रूप से होगा, उसके लिए जितना काल लगा उतने अंतर के लिए लगा। अंतर में नहीं देगा, हाँ सर्वत्र देगा, उल्लंघन करके देगा, क्योंकि इसमें देने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वहाँ देना और फिर नीचे ले आना, वो तो ये तो बात नहीं हो सकती है।
नीचे भी देगा,
सर्वत्र देगा, वो कांडक का माल सर्वत्र देगा, जो कुछ अभी उसकी अभी नहीं चर्चा अपनी, अभी तो कांड जो प्रथम स्थिति बनाई है ना उसने, प्रथम स्थिति में क्या है, उदय रूप के है वो अंतर मुहूर्त की बनाई है, अनुदय रूप है वो आवली प्रमाण बनी है, और उसमें जिस वो जब द्रव्य कितने प्रमाण कहाँ दिया जाता है उसकी चर्चा में वो बात आएगी, क्योंकि कांडक घात भी हो रहा है, यानी यहाँ तो पूरे निषेक ही नष्ट हो रहे हैं और नीचे के निषेकों में से अपकर्षण हो रहा है, कांडक घात नहीं भी है तो भी अपकर्षण तो हो ही रहा है वहां। नहीं बाकी तो ऊपर चल रहा है ना कांडक का समय। हाँ हाँ उसका कांडक का उत्कीर्ण काल समान है। हाँ कांडक घात और स्थिति बंध काल चल रहा है वहां। देखो हम इसको पढ़ेंगे, अंतरकरण काल विशेष अधिक है लिखा था ना, इसका नंबर कितना है? अभी 5 नंबर है। तो अंतरकरण काल विशेष अधिक है, यह अंतर फालियों का यानी अंतर जो करने का कार्य होता है वो फाली रूप से होता है, तो उनका उत्कीर्ण काल ग्रहण किया है और यही यानी यही काल वहां संबंधी स्थितिबंध काल और स्थितिकांडक उत्कीर्ण काल भी है। इतने ही काल में वो अंतिम स्थितिकांडक घात हो रहा है और उतने ही काल तक समान स्थितिबंध हो रहा है, क्योंकि इन तीनों का समान परिमाण पाया जाता है। परिमाण यानी प्रमाण, परिणाम की बात नहीं प्रमाण की बात। और पूर्व काल से इसका विशेष अधिकपना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि पूर्व जो हमने चौथे नंबर पर देखा था तो ऊपर की बात की थी, लास्ट में यानी उतरने वाले के शुरुआत की बात थी, उससे यहाँ वाला जो स्थितिबंध जो काल है या किरण काल है वो बड़ा है, विशेष अधिक है, क्योंकि उपरिम स्थितिबंध कालों से अधस्तन स्थितिबंध कालों के विशेष अधिक रूप से सिद्ध होने में कोई बाधा नहीं पाई जाती। ये उपरिम स्थितिबंध काल, क्योंकि उपरिम में किसको लिया हमने? उतरने वाले को लिया था ना, यहाँ पर लास्ट में 4 नंबर पर किसको लिया था?
उतरने वाले का पहला बंध,
उतरने वाले का जघन्य स्थितिबंध काल लिया था, उससे ये विशेष अधिक। अब हम आगे नंबर 6 पर देखते हैं।
सो उतरने वाले की जो विशुद्धि है उससे ये चढ़ने वाले के जब ये अंतरकरण किया तभी विशुद्धि कम होगी, इसे यहाँ पे समझना चाहिए,
क्योंकि ये अभी नीचे है। उतरने वाले के ऊपर के पोजीशन पर ही देखी थी हमने नेचुरली,
नहीं गिरने की अपेक्षा में सोचा,
गिरने की अपेक्षा होगी तो इसके लेवल पर आएगा तो कहेंगे हम गिरने की अपेक्षा। ये अभी शुरुआत में है, अंतरकरण के काल में है और वो अंत वाला जघन्य स्थिति बंध लिया,
क्योंकि वो विशुद्धि उसको भी और
अरे कुछ भी हो, परंतु अभी कोई चढ़ने वाला अनिवृत्ति करण में है और उतरने वाला सूक्ष्म सांप्राय में है, तो उतरने वाले की विशुद्धि कम होगी। किस पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, उस पर निर्भर है ना, वो उसी लेवल पर अगर सोचते हैं तो हम कहेंगे वहां तो विशुद्धि कम। ये बहुत पहले की बात है,
यहाँ पे परिणामों की भी समानता है, सभी समय में अनिवृत्तिकरण का काल है,
सभी समयों में समान नहीं है, नहीं, एक सभी समय, में सभी का समान
है, एक ही समय के लिए।
और ये चढ़ने वाले का और उतरने वाले के अनिवृत्तिकरण के उसी समय के परिणाम अलग अलग हो गए। ये अनिवृत्तिकरण जो शब्द आया है वो चढ़ने वालों को आपस में लगाना, उतरने वालों को आपस में लगाना, चढ़ने वाले के उतरने वाले के साथ मत लगाना।
अच्छा वी कैन नॉट कोरिलेट,
सिमिलरिटी है ना, हम लोगों को भोला भी याद आती है, जब दरवाजा तो पढ़ा था कि जब नरक से कोई आता है और एक देव से आता है तो उनकी पर्याप्ति का जो देव से आता है उसका तो बड़ा है,
हाँ,
वो तो नरक से होता है तो उसका थोड़ा है, तो वो मतलब इसको विशुद्धि का शुद्ध प्रयोग नहीं ले तो वो ये ना कि कम ज्यादा उसको मतलब वहां पर से यहाँ आ रहा है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा, और नरक से जो आ रहा है उसको अच्छा लग रहा है तो फटाफट पर्याप्ति उसकी पूरी हो रही है।
ये पहले आया था
बड़ा था
तो आगे हम 6 नंबर पर देख रहे थे। उपकस्या ठिदिबंध गद्धा ठिदिखंड या उत्कीर्णद्धा च विशेषाह्य, उत्कृष्ट स्थितिबंध काल। अब ये उत्कृष्ट ले रहे हैं, बड़ा वाला ले रहे हैं तो अपूर्वकरण के स्टार्टिंग वाला होगा, चढ़ते हैं चढ़ने वाले के, और स्थितिकांडक उत्कीर्ण काल यानी पहले वाला स्थितिकांडक घात काल विशेष अधिक है अंतरकरण काल से, क्योंकि ये नीचे उतर कर हम उसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ ये बड़ा होगा। उत्कृष्ट स्थितिबंध काल और स्थितिकांडक उत्कीर्ण काल विशेष अधिक है, क्योंकि प्रकृत में सभी कर्मों के, ये सभी कर्मों में लगाना, चढ़ने वाले अपूर्वकरण के प्रथम समय में आरंभ होने वाले स्थितिबंध काल और स्थितिकांडक उत्कीर्ण कालों को ग्रहण किया है। ख्याल में आई बात ये? फिर आगे देखते हैं, चरिम समय सुहुम सांप्रायस गुण सेड़ी निखेवो संखेज गुण। अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक का गुण श्रेणी निक्षेप संख्यात गुणा है। शंकाकार पूछता है वह कैसे? क्योंकि अपूर्वकरण के प्रथम समय में अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय के काल से विशेष अधिक रूप से जो गुणश्रेणी निक्षेप निक्षिप्त होता है, गलित शेष वह गुणश्रेणी निक्षेप सूक्ष्म करना। सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के अंतिम समय में अंतर्मूर्त प्रमाण दिखाई देता है। अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक का इस प्रकार का गुणश्रेणी निक्षेप पूर्व के स्थितिबंध काल से संख्यात गुणा होता है, प्रकृत में ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अभी ये क्या कहना चाहते जरा देखेंगे। अब वहां का कौन सा काल लिया था? चढ़ने वाले के पहले स्थिति कांडक घात होने के लिए जो काल लगता है उसकी बात की। उसी समय में इस जीव ने गुणश्रेणी निक्षेप किया था, कौन से कर्म में? हाँ, सभी कर्मों में। कितना किया था? अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय प्लस और थोड़ा। अब वो गलित शेष होता 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 कितना रह गया? अंतर्मूर्त प्रमाण। ये ज्ञानावरणादि में ज्यादा घटित होगा, उसमें भी मोर उसमें तो अंतर हो गया, नया गुण श्रेणी का बन गया वगैरह वगैरह, अगर अलग होगी क्योंकि वहाँ अन्य जो उदय रूप है उसकी गुण श्रेणी अंतर्मूर्त प्रमाण हुई थी, बाकी अवली प्रमाण हुई थी। तो ये अधिक घटित करने के लिए आसान है, अन्य कर्मों में देखेंगे। देखो बनी थी परंतु ग्यारहवें में तो सारे उपशमित है कि नहीं है? उतरते समय अवस्थित हुई थी फिर। ग्यारहवें गुण स्थान में उसका तो कुछ रचना ही नहीं, गुण श्रेणी रूप से उसमें कुछ नहीं दिया जा रहा था, अपकर्षण रुक गया था ना उसका। बाकी कर्म ने ज्ञानावरणादि में तो उसकी गुण श्रेणी बची थी वहां पर, दसवें के अंत में
बची हुई,
इतनी बची हुई है। हाँ, तो ग्यारहवें में उसके चलेगा कि नहीं? समान परिणाम है तो भले उसमें जितना का उतना ही द्रव्य अपकर्षित किया जाएगा। ज्ञानावरण दर्शनावरण में भी अपकर्षण चल रहा है और उसकी गुण श्रेणी उतनी की उतनी रहेगी। जब उतरना चालू करेगा तो वहाँ वो पहली वाली बड़ी जैसे चढ़ने में इतनी बड़ी बनाई थी, उतरने में अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय प्लस थोड़ी अधिक इतनी गुण श्रेणी होगी और वो गलिता शेष होगी। बिल्कुल वही उपशमित हुआ है ना, बाकी के केवल वो तीन करण नष्ट हुए थे, अन्य करण उसके चल रहे हैं, यानी संक्रमण भी हो रहा है उसका, जो कुछ हो रहा है अभी उसमें इतना चेंज हो गया कि कुछ देशघातीकरण हुआ था, स्थिति कांड घात हो रहे थे वगैरह वगैरह हो रहा था बाकी प्रोसेस, परंतु उसके करण उपशमित नहीं हुए थे। उसमें भी सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमण चल रहा है, उसमें भी अपकर्षण हो रहा है, उसकी उदीर्णा भी हो रही है, वो सब चल रहा है। वही तो बात बता रहे हैं, यहाँ अन्य कर्मों की समझना, ज्ञानावरणादि अन्य लेना, आयु को छोड़ना, मुनि को छोड़ना, ये कौन सी वाली बात चल रही है, कितनी बड़ी बनाई थी? तो यहाँ जो उसका जो काल है अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक का गुणश्रेणी निक्षेप, अब ये बचा हुआ गुणश्रेणी निक्षेप की बात चल रही है। पहले कितना बनाया था उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे, ये गलते गलते गलते, क्योंकि उसका अपूर्वकरण बीत गया, अनिवृत्तिकरण बीत गया, सूक्ष्म सांप्राय बीत गया। अभी गुणश्रेणी निक्षेप है, कितने निषेक गुणश्रेणी रूप से देने के बच्चे है, ये उसकी बात है। आयाम को चलेगा, यानी कितने निषेकों में वो निक्षेप हो रहा है, उसका दिया जा रहा है, उसकी बात चल रही है। मिनिमम क्यों? क्योंकि ये गलित थी जब बनाई थी, तो अभी बचते बचते इतनी रह गई है, उसके कारण ये कम नहीं हुआ है। क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्मों में वो नहीं, वो गलित अवशेष ही नहीं, मोनी में कुछ विशेषता हुई थी अलग अलग। मोनी की बात अभी मत निकालना यहाँ, ज्ञानावरणादि की बात चल रही है। गुणश्रेणी जो है वो गलित शेष है, और उसमें हाँ एक है कि परिणामों के कारण अधिक मात्रा में उसमें द्रव्य आएगा, उसकी बात अलग। हाँ वो बात, परंतु निक्षेप जो है वो कम, यानी कम हो रहा है परिणाम से, उसके कारण वो बनी थी। और उसमें भी हर समय असंख्यात गुना द्रव्य नीचे आएगा, वो तो बात सही होती है, ख्याल में आती है। इसको मैं फिर पढ़ती हूँ इस समाधान को, कि ये जो गुणश्रेणी निक्षेप सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में जो बचा था वो कितना है, तो पहले जो छठे नंबर पर देखा था उत्कृष्ट उत्कीर्ण काल, उससे संख्यात गुना है। उसका समाधान देखते देखो, क्योंकि अपूर्वकरण के प्रथम समय में अपूर्वकरण यानी उसका काल, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय के काल से विशेष अधिक रूप से जो गुणश्रेणी निक्षेप निक्षिप्त तो होता है, यानी यहाँ जो गुणश्रेणी का आयाम बनाया था, गुणश्रेणी रूप से जितने निषेकों को नक्की किया था, गलित शेष वह गुणश्रेणी निक्षेप, यहाँ से अपूर्वकरण बीत गया, उसके एक एक समय में एक एक निषेक नीचे गल गया, तो गुणश्रेणी का निक्षेप छोटा छोटा होता गया। वो सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के अंतिम समय में अंतर्मूर्त प्रमाण दिखाई देता है, यहाँ भी वो अंतर्मूर्त प्रमाण शेष है, गलकर अभी इतना बाकी रह गया है अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक का। इस प्रकार का गुणश्रेणी निक्षेप पूर्व के स्थितिबंध काल से, यानी जो हमने छठे नंबर पर जो उत्कृष्ट स्थितिबंध काल देखा, उससे संख्यात गुणा होता है। ये तो अल्पभूतों में अपनी बुद्धि नहीं चलेगी, भगवान की बात जो वाणी में बात आई है, कौन से काल से कौन सा काल बड़ा है, उसकी बात यहाँ चल रही है। प्रकृत में ऐसा ग्रहण करना चाहिए। आप बहुत कंफ्यूजन करें, देखो उतरते समय पहले लोक की बनी, फिर जब माया का उतरने का काल आया तो बढ़कर बनी, फिर वो अवस्थित रही, फिर मान के फिर बढ़ी, फिर क्रोध का फिर बढ़ी, तब जाके ज्ञानावरणादि के समान हुआ।
तो ज्ञानावरणादि की यहाँ से जो बात चलती है, वो जो अभी जो है वो शांत हो वापस सूक्ष्म सांप्राय वापस
नहीं, उतरते समय सूक्ष्म सांप्राय में आते ही फिर बड़ी वाली कर देता है अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय प्लस अधिक।
अच्छा,
उतरते समय फिर नई गुणश्रेणी बनी होगी और वो गलित शेष रह जाएगी। नई गुणश्रेणी और वो ज्ञानावरणादि का रहेगा, वो गलित शेष रहेगा, और मोहिनी के जिस कषाय के उदय से चढ़ाए उस कषाय का नंबर आने पर उसके समान हो जाएगी, तब तक उससे छोटी रहेगी। अब यहाँ देखना, ये जो हमने सातवां नंबर पर देखा था गुण सूक्ष्म सांप्राय के अंत में जितना गुणश्रेणी का निक्षेप बाकी था उसकी बात की। अब यहाँ कहते तम चेव गुणश्रेणी शीर्षयम की भन्नदी, वही गुणश्रेणी शीर्ष कहा जाता है। कहीं कहीं गुणश्रेणी शीर्ष एक निषेक को कहते हैं, और कहीं कहीं पूरे दो चार जितने कुछ निषेक है कुछ उसको भी गुणश्रेणी शीर्ष कह सकते। जो यह अनंतर पूर्व अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के गुणश्रेणी निक्षेप का प्रमाण कहा है, ये प्रमाण इन्हें एक से ज्यादा है ना, उपशांत कषाय के काल के संख्यात्रे भाग प्रमाण वही गुण श्रेणी शीर्ष कहा जाता है। पहले हमने देखा था ये जो गुण श्रेणी का निक्षेप यहाँ बचा है ना, ये उपशांत कषाय के काल में उतना का उतना रहेगा, और इसको क्या कहेंगे, गुण श्रेणी शीर्ष। ये जो गुण श्रेणी निक्षेप है उसी को यहाँ गुण श्रेणी शीर्ष कहा, क्योंकि पूर्व में गलित शेष गुण श्रेणी निक्षेप का जो शेष रहा उसका शीर्ष रूप से अवस्थान देखा जाता है, इसको शीर्ष कहेंगे। पहले की जो गुण श्रेणी उसने अपूर्वकरण के पहले समय में बनाई थी, जो अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय प्लस थोड़ा अधिक था, तो वो गलते 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 जो थोड़ा अधिक प्रमाण था वो अभी शेष रहा, उसी को यहाँ गुण श्रेणी शीर्ष कह दिया। हाँ, अब ये उतरते समय फिर बढ़ेगी। देखो हमने उतरते समय इसको लिया था, ले लो, उतरने वाले के सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय में पेज नंबर वन आगे बढ़ रहे, आगे क्यों देख रहे, 116 क्या पॉइंट नंबर के पेज नंबर, मुझे सूक्ष्म सांप्राय के पहले समय में वो बड़ी गुण श्रेणी। हाँ देखो देखो 44 पेज पर तो गिरने वाले की प्ररूपणा शुरू हुई थी, अब उसके आगे कहीं ये मिल जाएगा। हाँ देखो 50 पेज पर, ये पृष्ठ संख्या 50 पर लेना, वहां सूत्र निकालो। मैंने सूक्ष्म सांप्राय के उतरने वाले ने सूक्ष्म सांप्राय के पहले समय में क्या क्या किया, तो लोभ का आकर्षण किया, सभी उपशांत थे, अनुपशांत हो गए, पहले तीन लोभ को अनुपशांत किया, उसका आकर्षण होगा और अंतर रखकर नीचे उसकी पहली स्थिति बनेगी, तो वहां गुण श्रेणी की रचना हो जाएगी। ये तो लोभ की बात है, अन्य कर्मों में क्या होता है वो लिखा है 50 पेज पर, 50 पेज निकालना आप। हाँ तो वहां लिखते आयु कर्म को छोड़कर, मूल सूत्र में ही पढ़ रहे हम, शेष कर्मों का गुण श्रेणी निक्षेप, वहां एक ऐड किया था हमने सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण काल से विशेष अधिक होता है तथा शेष शेष में निक्षेप होता है। अब उसके स्पष्टीकरण में क्या लिखा है नीचे देखो, ये बात महत्व की, पहले पहले ने 11वें गुण स्थान में ज्ञानावरणादि कर्मों का गुण श्रेणी निक्षेप उपशांत कषाय के काल के संख्यात्वे भाग प्रमाण था और वो अवस्थित आयाम वाला था, सूक्ष्म सांप्राय के अंत में अंत तक उसका पहले वाला गुण श्रेणी का वो चल रहा था, वो गलित शेष था, जब 11वें में प्रवेश किया अभी वो गलित शेष नहीं रहा, क्या रहा वहां पर, वो उतना का उतना रहा, अवस्थित रहा, वहां उदय था कि नहीं, अरे अभी गुण श्रेणी किसकी बची है तो उसका उदय था कि नहीं था, तो एक एक निषेक गल रहा था, परंतु ऊपर का एक एक निषेक प्रवेश करेगा तो उसको गुण श्रेणी का वो निक्षेप है वो उतना का उतना रहा, पहले क्या रहा था एक एक गल रहा था ऊपर से प्रवेश नहीं कर रहा था इसलिए वहां गलित शेष कहा था, अब उतना का उतना आयाम वाला रहेगा, उतना का आयाम रहेगा उसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो नहीं गल रहा, गल रहा है परंतु एक निषेक उसमें एंटर हो रहा है इसलिए उसका आयाम उतना का उतना रहेगा, और वो आयाम कितना थे तो ग्यारहवें गुण स्थान का जो काल है उसके संख्यात्मक भाग पर। तो आयाम वाला था अब उतरते समय क्या होगा, वो सूक्ष्म सांप्राय निवृत्तिकरण अपूर्वकरण इन तीनों का मिलाए हुए काल से थोड़ा ज्यादा करके वो फिर बड़ी गुण श्रेणी बनाएगा वहां पर। और उतरते समय में वो कैसी रहेगी, गलित शेष रहेगी। ग्यारहवें गुण स्थान के काल तक कैसी रही थी, अवस्थित रहेगी। ख्याल में बात यही बात अभी हाँ ये इतनी इतनी रही थी, उतरते समय फिर बड़ी हो गई। दसवें के फर्स्ट समय में, पहले समय में तीनों का काल मिलकर जितना होता है उससे थोड़ी ज्यादा, ये थोड़ी ज्यादा वो यहाँ थी ही थे, इसके नीचे और हम वहाँ दिखाएंगे इसके, इतनी लंबी उसकी गुणश्रेणी का निक्षेप बना दिया और वो गलित शेष बन जाएगा। अलग अलग जगह पर गुणश्रेणी का जो निक्षेप होता है वो कम ज्यादा जहाँ जो यथायोग्य हो जाता है, ऊपर के द्रव्य का आकर्षण करके वैसी रचना सहज स्वयं में बन जाती है। नहीं तो हम कहेंगे ये सब गल गई, अभी नीचे आने पर संयत की गुणश्रेणी होगी कि नहीं होगी, वहाँ उसकी नहीं बन जाएगी। हाँ यहाँ गाथा 312 का रेफरेंस दिया था, हाँ सूक्ष्म सांप्राय यहाँ ऐड किया था उसके लिए। आओ आओ गाथा 312 पेज नंबर 270 लिखा था और
हाँ
123 पृष्ठ पर हाँ देखो इसी पुस्तक का रेफरेंस और ज्यादा है वहाँ लिख के रखना, लिख लिया अच्छा 50 पेज पर लिखना जो हमने सूक्ष्म सांप्राय शब्द ऐड किया था उसके लिए हमने लब्धिसार का रेफरेंस लिखा था, अभी इसी ग्रंथ का रेफरेंस लिखना है तो पृष्ठ संख्या है 123 का। हाँ ना इसी ग्रंथ वहाँ सूत्र में देखा था अभी समाधान की पहली लाइन अभी आते 123 पृष्ठ पर 123 पेज हमने क्या देखा था, ये जो सातवें पॉइंट पर अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय चढ़ने वाला उसका जो बचा हुआ गुणश्रेणी में अभी वहाँ का जो गुणश्रेणी निक्षेप है वो संख्यात गुणा है उसके पहले वाले पॉइंट से उतना का उतना अवस्थित रहता है, यानी वही गुणश्रेणी शीर्ष कहलाता है, ये बात यहाँ बताई। ये तो कुछ अल्प बहुत्व का नंबर तो इसमें नहीं देंगे, हाँ अभी आगे पढ़ेंगे हम। वसंत कसायस्य गुणश्रेणी निक्षेवो संखेज गुण, ओ यहाँ नया गुणश्रेणी निक्षेप हो गया क्या, उपशांत कषाय का गुणश्रेणी निक्षेप संख्यात गुण है, हम उसी को अवस्थित समझते थे। वो वाला जो था सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में था
बचा
वो बचा हुआ
और
यहाँ पर नया बना, हाँ ये वो भी संख्यात विभाग प्रमाण कह रहे हैं। ये आठवें पॉइंट पर आ गया, यानी सूक्ष्म सांप्राय के अंत में जितना बना बचा था उससे उपशांत कषाय का गुणश्रेणी निक्षेप संख्यात गुणा है, यह भी उपशांत कषाय के काल के संख्यात विभाग प्रमाण ही है, किंतु पहले के गुणश्रेणी शीर्ष के द्वारा अवगाहित स्थान से यह संख्यात गुणे स्थान को अवगाहित कर स्थित है। यानी वो पहले का जो सूक्ष्म सांप्राय के अंत में जो था उसको और संख्यात गुणा कर दिया, वो ये इतना अवस्थित रहेगा। इससे ग्यारहवें का काल संख्यात गुणा है, ये ग्यारहवें का गुणश्रेणी निक्षेप है, वो ग्यारहवें के संख्यात विभाग प्रमाण है, यानी सूक्ष्म सांप्राय के अंत में जो था उससे ये संख्यात गुना बढ़ जाता है। हाँ, ज्ञान आवरण आदि के, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं, बाकी तो मोहनीय तो उपशमित है वहाँ पर, उसकी कुछ बात नहीं बनेगी, वो तो है ही नहीं वहाँ पर, उसके गुण श्रेणी वगैरह कुछ है ही नहीं, द्वितीय स्थिति में है और सारे उपशमित पड़े हैं। गुण श्रेणी शुरुआत नीचे होती है ना, उदयावली के ऊपर या उदय के समय से जहाँ जो यथायोग्य होती है, वो तो सारे वहाँ गल कर नष्ट हो गए हैं। यहाँ बात ज्ञानावरण आदि की चल रही है, तो दसवें के अंत में जो गुणश्रेणी शीर्ष बचा था, शीर्ष कितने निषेकों का मान लेते चार बचे, अब यहाँ पर जो बनेगा नया ग्यारहवें के पहले समय में वो तो 16 समझ लो ना, उससे संख्यात गुना, और ग्यारहवें के काल उससे भी संख्यात गुना होगा। ये ग्यारहवें का काल नहीं है, ग्यारहवें का गुणश्रेणी निक्षेप है, शीर्ष जो था वो ग्यारहवें का संख्यात भाग था, उसके भी संख्यात गुणा वाला नया गुण श्रेणी निक्षेप हुआ है, उससे भी ग्यारहवें का काल और संख्यात गुणा है। नेचुरली वहाँ तो लोभ का उदय है और वहाँ तो पूर्ण वितरा गए कैसा रही तो है ना, पूरा है, बहुत अंतर है। हाँ, पहले वाला जो 7 नंबर था उपशांत कषाय का गुणश्रेणी निक्षेप, ये नया किया उसने। हाँ,
परिणाम इतना विशेष है कि इसको तो हाथ जोड़े नमस्कार कर रहे हैं और उसको अपन नहीं कर रहे हैं। उपशांत कषाय का जो पहला परिणाम है तो हाथ जोड़े नमस्कार।
देखो अभी 9वें नंबर पर हमने क्या देखा था, परिवद माण नहीं देख रहे अभी, परिवद माणयस यानी गिरने वाले के सुम सांप्रायद्धा संख्यज गुणा, सुम्र सांप्राय का काल संख्यात गुणा है, तो श्रेणी उसकी बात चल रही, काल के नहीं चल रही, नहीं चल रही, यहाँ भी काल की बात चल रही। ऊपर जो 8वें में दिया था उपशांत कषाय में जो गुण श्रेणी का निक्षेप था, हाँ वहाँ की गुण श्रेणी जो बनती है उससे गिरने वाले सूक्ष्म सांप्राय का काल संख्यात गुणा है, गुणस्थान का पूरे। हाँ देखो यहाँ क्या लिखा, ये जो निक्षेप है ना उससे ग्यारहवें का काल संख्यात गुणा है, परंतु ग्यारहवें के काल को बीच में लिया ही नहीं अभी, उस निक्षेप से सूक्ष्म सांप्राय का काल पहले लिया है। हम देखेंगे तो और क्लैरिटी होगी। देखो श्रेणी से गिरने वाले का सूक्ष्म सांप्राय काल संख्यात गुणा है, यह भी उपशांत कषाय के काल से संख्यात्वे भाग प्रमाण ही है, ऐसा होकर भी पूर्व के गुणश्रेणी निक्षेप से संख्यात गुणा ऐसा ग्रहण करना चाहिए। देखो देखो हमने क्या मान लिया था, ये 7वें नंबर हम थोड़ी उसको संख्या देंगे ना, 7वें नंबर का गुणश्रेणी निक्षेप हमने 4 माना था, उपशांत कषाय का गुणश्रेणी निक्षेप हमने 16 माना था ना हमने, अब उससे भी संख्यात गुणा यहाँ होगा, 32 गुणा करो मान लेते हैं ना, और ग्यारहवें का काल उससे भी ज्यादा होगा। हाँ हमने ग्यारहवें का और छोटा कर दिया था। देखो देखो ये क्या लिखा है, यह भी है ना सूक्ष्म सांप्राय का काल भी उपशांत कषाय के काल से संख्यात वे भाग प्रमाण ही है, छोटा है, ऐसा होकर भी गुण श्रेणी निक्षेप से संख्यात गुणा है। अब ये ग्यारहवें का काल कहाँ लेते हैं आगे देखेंगे। ग्यारहवें का काल कहाँ लिया, अलग से नहीं लिया। उपशांत काल, अच्छा ये उपशांत काल जाके 130 पृष्ठ पर आया है। वो तो हमें मालूम था कि जो क्षुद्र भव है ग्रहण, यानी क्षुद्र भव का काल है जो लब्धि अपर्याप्तक का, उससे दुगुना ग्यारहवें गुणस्थान का काल है, ये हमें पहले से पता था, मैंने बोला भी था वो, परंतु ये काल बहुत बड़ा है ना, उसके बीच में और कितने काल बताए। ये देखो अभी हमने जो नव सूक्ष्म सांप्रायिक का काल नौवे पॉइंट पर देखा है, उसके आगे बीच में कितने कितने अलग अलग काल देखे। हाँ नहीं, दसवें से ग्यारहवा छोटा ऐसा कहते थे, परंतु सब मिलकर छठे से छोटा इतना तो हमने देख लिया था पहले। कैसे सिद्ध, ये कहाँ अभी सिद्ध हुआ है,
अभी तक दसवें का काल छोटा है
बहुत से। हाँ चढ़ना वाला और उतरने वाला ग्यारहवें को कंसीडर नहीं करते हुए की बात चल रही है। अब तक जो हम चढ़ने वाले उतरने वाले की बात करती है, ग्यारहवें तो एक स्टडी लेवल पर है।
हाँ।
उस ना चढ़ने वाले में उसको लेना है ना उतरने वाले में लेना है, वो तो प्लेटो है ना, एक तो एक लेवल पर है। दसवें से ग्यारहवें का काल बड़ा है इतनी बात यहाँ ले।
हाँ, हाँ। उतरने वाले का दसवें का काल
अलग तरह से आगे आगे वाला छोटा छोटा है। हाँ। नहीं वैसे है ना, संख्यात्वे भाग प्रमाण है। हाँ लग जाएगा ना,
नहीं पर ये वो 130 पेज तक कहेगा तो ये सब भूल जाएगी ना।
देखो अभी दसवें नंबर पर आ गए हम, पृष्ठ संख्या 124 पर आते हैं। सपना सार में था ना ये, अल्पभूतों में पहले देखा हुआ है, मुझे ये पक्का याद है कि ये क्षुद्र भव ग्रहण और ग्यारहवा गुणस्थान, ये दो गुणा वाली की बात मुझे पक्की याद है। बाकी ये जो सूक्ष्म सांप्रदाय से वो बड़ा होता है वो बात इतनी नहीं थी, फिर भी ये बात वैसा अलग से नहीं लिया। अब हम पढ़ेंगे फिर उसके साथ कंपेयर करेंगे बाद में, पहले इसको तो देखेंगे अभी। अब आगे पढ़ेंगे हम 124 पर आगे, मंजूबेन मिला ना। ये अल्पभूत पर चल रहा है, श्रेणी चढ़कर उतरने वाले के अलग अलग कालों की अपेक्षा से अल्पभूत रहता है। तो ये नंबर 10 पर आ गए हम, है ना, कितना लिया अभी, अभी
9 हो गए,
9 हो गया। तस्से व लोभस्य गुणश्रेणी निक्षेपो विशेष चाहिए, उसी के लोभ का गुणश्रेणी निक्षेप विशेष अधिक है, क्योंकि गिरने वाला सूक्ष्म सांप्रायिक जीव अपने काल से एक आवली मात्र अधिक करके लोभ संज्वलन का गुणश्रेणी निक्षेप करता है। क्योंकि पहले वो पुष्टि रूप अपकर्षित होते हैं और उसका गुणश्रेणी निक्षेप दसवें के काल से थोड़ा एक आवली अधिक रहेगा, वो जब आवली बचेगी ना, यहाँ तो अवस्थित होगा ना वो,
ये तो अवस्थित हो जाएगा। और ये भी कृष्टि का जो गुण श्रेणी निश्चय पे के पूरा लोक का
नहीं, पूरा लोक का नहीं है,
खाली ये कृष्टि का है ना,
क्योंकि वहाँ फिर बादल लोक का होगा।
हाँ, वो जब वो बड़ा वाला हो जाएगा,
बढ़ती चली जाएगी आगे आगे,
तो यहाँ पे कैन बी राइट
नहीं
लोक का
कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, बस लोभ का किया है इतना ही। इसमें से तो प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की भी बात है, उसमें तीन प्रकार के लोभ को आकर्षित किया था।
हाँ।
जो उदय रूप है उसके उदय के समय से, बाकी ऊपर है तो उसमें तो हम ऐसा नहीं कि लिखेंगे कि उसकी तो कृष्टि नहीं बनी थी। यहाँ भी भले वो कर्दक रूप भी आए होंगे, फिर भी उसका उदय नहीं है, उदय तो कृष्टि उनका चलेगा। यहाँ लोभ संज्वलन लिखती है ना उन्होंने, गुण श्रेणी निक्षेप करता है कितना है, तो एक आवली अधिक है। इस कारण से यहाँ मात्र एक आवली काल का प्रवेश कराकर यह काल विशेष अधिक हो गया। प्रवेश कराकर इन्हें नौ से यह दसवा काल कितना अधिक है, तो एक आवली से ज्यादा है। वहां तो सूक्ष्म सांप्रायिक का काल लिया और उससे वहां की जाने वाली लोभ की गुण श्रेणी एक आवली काल से ज्यादा है।
हाँ।
इसलिए इसको विशेष अधिक किया। यानी ये किसकी बात हो रही है उसकी हम केवल वो चर्चा करेंगे, अब उसके आगे देखेंगे। उवसामगस्य सुहम सांप्रायिद्धा किट्टिनम उवसामनद्धा सुहम सांप्रायिस्य परमठिदि च तिन्नीवि तुल्लाओ विशेषाय। अभी तीन काल समान है और विशेष अधिक। कौन कौन से तीन? उपशामक का सूक्ष्म सांप्रायिक काल,
ये करने वाले का।
हाँ, उपशामक कर रहे हैं ना, उतरने वाला ने अनुपशांत हो गया वो।
हाँ हाँ।
चढ़ने वाला उपशामक है, तो उपशामक का सूक्ष्म सांप्रायिक काल, कृष्टियों के उपशमाने का काल, क्योंकि जब सूक्ष्म सांप्राय में आता है
तभी कृष्टि का
तभी कृष्टियों को उपशमाया जाता है। वो उतरने वाले की अवली ज्यादा थी,
ये तो द्वितीय स्थिति में उपशमन होती है। नहीं, उपशमने का काल तो द्वितीय स्थिति में होता है।
आपका प्रश्न फिर से, यानी सूक्ष्म सांप्राय के पूरे काल में उपशमन का कार्य चलता है कि नहीं चलता, ऐसा आपका प्रश्न है। हाँ, चलता है। हाँ, उसका अपकर्षण रुक जाएगा।
हाँ।
द्वितीय स्थिति में जो थे पहले, उसका अपकर्षण होकर पहले स्थिति में भी आ रहे थे, उसकी उदीर्णा भी हो रही थी, वो सब रुक जाएगी।
इसका अपकर्षण नवे में रुक, नवे के अंत में रुकेगा कि दसवें में
कृष्टि का अपकर्षण करेंगे।
हाँ, तो कृष्टि का अपकर्षण कभी तक
दसवें में चढ़ते समय होगा ना।
नब्बे में
कृष्टि का उदय चल रहा है, कृष्टि का उदय चल रहा था वहां पर। सूक्ष्म लोभ की उदीर्णा कहाँ तक है?
एक आवली पहले तक।
हाँ, तो वो चल रहा है कि नहीं वहां पर?
हाँ।
अपकर्षण उदीर्णा सब चल रहा है वहां पर। देखो ये क्या कह रहे थे, सूक्ष्म चढ़ने वाले के सूक्ष्म सांप्रायिक का काल, यहाँ सूत्र ही बता रहा है कि तीनों तीन तुल्य है। कृष्टियों के उपशमाने का काल, आवली कम है ऐसा नहीं कहा, उतना ही है, यानी पूरे सूक्ष्म सांप्रायिक के काल में कृष्टियों को उपशमाया जा रहा है, वो उसका उपशमने का काल है। ये कृष्टि करने का काल तो नवे में चला गया था, ये कृष्टियों को उपशमाने का काल कहो या सूक्ष्म सांप्रायिक चढ़ने वाले का काल कहो, एक ही बात है। और तीसरा, सूक्ष्म सांप्रायिक की प्रथम स्थिति, ये तीनों समान होकर विशेष अधिक है। इसका अर्थ क्या हुआ इससे भी, ये जो हमने देखा था ना, उतरने वाले का सूक्ष्म सांप्रायिक का काल नौवे पॉइंट पर था,
उससे
उतरने वाले का दसवें पॉइंट पर एक आवली ज्यादा था।
हाँ, और उससे
ये, और उससे ग्यारहवें पॉइंट पर चढ़ने वाले का सूक्ष्म सांप्राय का काल था, तो उतरने वाले के काल कम होते ये बात सिद्ध हुई कि नहीं हुई?
हाँ,
वो 50 नंबर पर कहाँ पर पहले हमने देखा था ना, नहीं वो 50 नंबर पर नहीं था, 50 पेज
यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है ना, क्योंकि ये श्रेणी के गिरने वाले का काल छोटा है।
वही तो पहले ये बात आई थी, सब जगह वो काल छोटे हो, बड़े हाँ। होते। ये कौन से पेज पर आए थे मेरे पास?
ये हमने बीच में पढ़ा था,
पीछे पीछे लिखा था मैंने, पेज 60 में।
हाँ, ये जो लास्ट 139 पॉइंट पे है ना,
तो उसको हमने पृष्ठ 76 से के द्वारा सही किया था, विशेष हीना के बदले विशेष आहिया किया था। 76 में भी इसका रेफरेंस मिला था
हाँ।
और अभी यहाँ पर अल्प बहुत्व में रेफरेंस मिला 124 पर।
तो ये नीचे भी विशेष हीने उसका अधिक कर देना चाहिए ना,
किया था हमने।
अच्छा, मैंने ऊपर ही किया, मैंने नीचे नहीं किया।
विशेष हीन लिखा था ना, हीन हाँ। निकाल कर अधिक किया था हमने, रेफरेंस 124।
नहीं, मैंने ऊपर किया था, यहाँ पे नहीं किया। हाँ, वो उससे पेज 76 का किया था, पर नीचे नहीं।
यानी अभी अल्प बहुत्व का रेफरेंस भी मिल गया कि 90 पॉइंट पर उतरने वाले का काल था, 10वें पॉइंट पर वहाँ उतरने वाले का गुणश्रेणी निक्षेप एक आवली अधिक था, और 11वें पॉइंट पर चढ़ने वाले सूक्ष्म सांप्रदाय का काल था। यानी चढ़ने वाले काल से उतरने वाला काल छोटा है, ये बात विशेष ही नहीं, ये बात सिद्ध होती है। वहाँ विशेष अधिक लिखा गया था जो हमने करेक्ट किया था, और वो करेक्शन की करने के लिए ये रेफरेंस दिए थे, वो सिद्ध हुए। मैंने तो वही बताया, विशेष हीन लिखा था हमने, उसको विशेष अधिक कर दिया। यानी उतरने वाले का विशेष अधिक कहा था, उतरने वाले के लिए उन्होंने विशेष अधिक कहा था।
हाँ,
ये हो गया अपना अल्प बहुत्व से हमें वो रेफरेंस भी मिल गया, तो तीनों समान होकर विशेष अधिक है, क्योंकि श्रेणी से उतरने वाले के काल से ये देखा है, तो इतना स्पष्ट लिखा है 291 में, श्रेणी से उतरने वाले के काल से चढ़ने वाले के काल का सर्वत्र विशेष अधिक रूप से अवस्थान देखा जाता है। यह लिखा है, उदरमानत धादो चढ़मानत धाये सौवत्थ विशेषाह्य भावेन अवठान अभुवगमादो। हाँ, वहां भी उन्होंने ही लिखा था, कमेंट्स जो है बीच में, जो स्पष्टीकरण जो है वो विशेष आचार्य का ही है। वहां तो विशेष आप भी विशेष हीना का डिफरेंस हो गया था, अब ये क्लैरिटी हो गई अपनी, क्योंकि लब्धिसार में तो पहले वो बात तभी मैंने पढ़ी, तो वहां ख्याल में आई कि वहां तो चढ़ने वाले का विशेष अधिक लिखा था, और इस ग्रंथ में भी हमें रेफरेंस मिल गए। अब देखो, हम 291 पॉइंट हम पढ़ रहे थे 124 पृष्ठ पर, क्योंकि श्रेणी से उतरने वाले के काल से चढ़ने वाले के काल का सर्वत्र विशेष अधिक रूप से अवस्थान देखा जाता है। यानी श्रेणी चढ़ने का काल जो है हर एक गुणस्थान का, हर एक अलग अलग प्रोसेस का, वो ज्यादा है, उतरने वाले का कम है। यहाँ पर विशेष अधिक का प्रमाण अंतर्मुहूर्त मात्र ग्रहण करना चाहिए। यानी लोभ का गुणश्रेणी निक्षेप जो उतरने वाले का था, उससे भी अंतर्मुहूर्त अधिक चढ़ने वाले का पूरा सूक्ष्म सांप्रदाय का काल है। देखो हम देखते हैं ना, उपशमाने का काल अंतर्मूर्त है, अनुपशमाने का काल एक समय है, एक समय हो जाता है। अभी सब में लगा लो, पुष्टि करने का काल कहो या कुछ जो कहे उसके उल्टा, वो जब किया था वो उल्टाने में तो एक समय लगता है। आगे देखते हैं 12 नंबर पर, वो सामगस्य किट्टी कर्णधा विशेष आया। जब जब उपशामक कहा है वो चढ़ने वाला समझना, कि उपशम करने का काल तो वहीं करने का कार्य वहीं पर हो रहा है। तो ये 12 पॉइंट पर है, हिंदी पॉइंट पढ़ेंगे। उपशामक का पुष्टिकरण काल विशेष अधिक है, डबल नहीं होगा। पुष्टि करने का बताया है, पुष्टि वेदने का नहीं कहा। देखो देखो बरोबर, ये जो है दसवें का काल, इसको कहते हैं पुष्टि वेदक काल। उसके पहले नौवे के अंत में था पुष्टि करने का काल,
हमने टू थर्ड
और उसके वन थर्ड था बीच वाला। नवे में जो पूरा लोभ वेदक काल है, बादर लोभ वेदक काल,
उसका तीन में से
उसके तीन नहीं करना, पूरा जो लोभ वेदक काल है नवे और दसवे का मिलकर उसके तीन भाग करना। समान में थोड़ी असमानता है वहां पर, मान लेते हजार की बात करते हैं हम, अच्छा, और उसको दस दस के बाद हम भाग देंगे, तो यहाँ से दस का भाग देंगे तो एक भाग की वैल्यू होगी 100 और बहुभाग हुई 900 के तीन समान भाग किए तो 300-300 आएंगे हर एक के खाते में।
अच्छा 300-300-9।
अब उसमें 100 बाकी निकाले थे, उसको 10 अलग निकालो तो 90 रह गए, तो यहाँ 390 किए। अब जो 10 बाकी रखे थे उसके फिर एक और 9 भाग करना, 309 और 301। अब ये जो 301 है वो सुकृष्टि वेदक काल है, जो सूक्ष्म सांप्राय का काल है। बीच वाला 309 वाला है वो कृष्टिकरण काल है।
अच्छा 301 से
और 390 है उसमें कुछ कृष्टि करने का कार्य नहीं हुआ था, बस वहाँ बादर लोक का वेदक काल था, उस समय कृष्टि नहीं बनाई थी। कृष्टि करने का काल बीच वाले त्रिभाग में हुआ था, वो 101 होगा तो 109 है, तो ये विशेष अधिक
301 और 309 बराबर है।
हाँ मैंने ये बनाया था ना, और ये उदाहरण मैंने वो अनुवाद में भी लिखा है विशेषार्थ में, समझने में आसान होता है ना इसके कारण। देखो ये कृष्टि करने का सूक्ष्म सांप्राय का काल था, उपशमने का काल था, उसी को कृष्टि वेदक काल भी कहेंगे, क्योंकि जब कृष्टि का उदय चल रहा था और बीच की स्थिति में उसका उपशमाने का कार्य भी चल रहा था, तो उसको कृष्टि वेदक काल कहो, पुष्टि उपशमाने का काल को एक ही बात, दोनों ही कार्य वहां हो रहे हैं। यानी इसको हमने 301, 309 और 390 ऐसे तीन भाग किए थे। तो यहां वही कहते हैं उपशामक का कृष्टिकरण का काल, और पहले था सूक्ष्म सांप्राय का कहो या
कृष्टि
का उपशमाने का काल, हाँ उससे ये थोड़ा विशेष अधिक है। ये 12 पॉइंट हम फिर पढ़ते हैं उसको, स्पष्टीकरण
स्पष्टीकरण काल है।
हाँ नहीं देखो देखो ये हमने देखा, ये नौवा गुण स्थान है इतना, अभी लोभ का वेदक काल शुरू हुआ, उसके पहले माया वगैरह सब उपशमित हो गए। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ 390 का काल, इसमें से फर्स्ट हाफ या पूरे लोभ वेदक काल दसवां नौवां मिलकर उसका वन थर्ड, पहला वन थर्ड 390 का हमने मान लिया है, उसमें कृष्टि करने का कुछ नहीं हुआ। दूसरा जो वन थर्ड है 309 नंबर का, 309 वाला, उसमें कृष्टि की, वहां उदय बादर लोक का चल रहा है, और ये कृष्टि कहाँ की, तो द्वितीय स्थिति में करके वहां पड़ी रही, उसी समय बादर लोक का उपशमने का कार्य भी चल रहा था। अब दसवें में आया तो यहाँ पर जो कुष्टी की थी उसका यहाँ उदय चल रहा है, और उसी समय ऊपर जो द्वितीय स्थिति में कृष्टि पड़ी थी उसको उपशमित भी किया है। तो ये कृष्टि वेदक काल है और ये कृष्टिकरण काल तीन हाँ 11वें नंबर का पॉइंट जो है वो सूक्ष्म सांप्राय का काल कहो या कृष्टि वेदक काल कहो या कृष्टि उपशमक काल कहो एक ही बात। 12 नंबर पर है वो 309 वाला है कृष्टि करने का काल है। यह काल चढ़ने वाले के लोग वेदक काल के तीन भागों में से द्वितीय भाग प्रमाण लिख दिया ना यहाँ पर, यही तो आपने देखा था चढ़ने वाले के तीन भाग किए उसमें ये द्वितीय भाग है। और यह सूक्ष्म सांप्राय के काल से विशेष अधिक है, यह असिद्ध भी नहीं है, यानी वो अकेला इतना अधिक है तो पूरा नौवा गुणस्थान कितना अधिक होगा नहीं समझे। सूक्ष्म सांप्राय के काल से ये 103 था, इसका अकेला कृष्टि करने का काल 309 हो गया, ये लोग अकेला लोग वेदक काल कहेंगे तो डबल से भी ज्यादा हुआ, तो उसके आगे माया वेदक कहो मान वेदक कहो क्रोध वेदक वो कितना लंबा बड़ा हो जाएगा। और वो भी अंतर करने के बाद की बात थी, पूरा नव गुणस्थान तो संख्या बहुभाग बीतने पर अंतर किया था और उसके बाद ये अलग अलग वेदक काल हमने देखे थे, यानी पूरा नव गुणस्थान कितना अधिक ज्यादा बड़ा होगा ख्याल में है ना बात। ये थोड़ा अल्पबहुत्व से हमें ये पता चलता है, हम खाली ये बड़ा है वो छोटा है ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, उस विषय संबंध में हमने बिल्कुल निशंकता होती, क्लैरिटी होती है, स्पष्टता होती है। ये जानने का क्या फायदा है ना, ज्ञान होना यही फायदा है। नहीं समझे आप कुछ नहीं जान रहे थे, अभी जान गए क्या फायदा हुआ, अरे ज्ञान हुआ ना ये फायदा नहीं लगता है। क्या कहते हैं आनंद होता है बिल्कुल, और क्लैरिटी होती है ना तो ये यही परिणामों की जो विशुद्धि होती है ना इसमें, और क्या होती है यहाँ क्या कषाय हो रहे हैं इसको जानने में उसको समझने में अपना उपयोग लगा है एकाग्रता से। वो कषाय अलग टाइप का है, वो मंद 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 वाला है, अन्य जो आर्तर रहते वो इसने मेरा ये किया उसने मेरा ये छीना ये इसके कुछ नहीं वो ये आकुल तो कुछ नहीं ना इसमें, सहज रूप से निराकुलता हो रही है। नहीं ऐसी आकुलता नहीं रहेगी, क्योंकि हम जब द्रव्यान योग के भी सिद्धांत पढ़ते हैं कि यथा समय ज्ञान का अपना गेय भी निश्चित है, तो अभी मैं इसको जानू ये वाले आकुलता वाली वो आकुलता यहाँ नहीं रहेगी। जैसे टीवी देख रहे हाथ में रिमोट कंट्रोल है क्या करते हो और वहाँ एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई कितने चैनल्स घुमाते हैं, तो वहाँ की आकुलता और यहाँ कुछ जानने की इसमें कुछ चेंज है कि फर्क है कि नहीं, अंतर है कि नहीं अंतर है। और देखो ये उपयोग को एकाग्र एक जगह ने बार 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 इसका विचार उसका विचार या ये पलटना होता है ना खास पास, क्यों राग के कारण होता है। अब यहाँ एक ही विषय को हम अच्छी तरह से उसी को खूब एकाग्रता पूर्वक जान रहे हैं, ये चंचलता नहीं हो रही है, ये सब फायदा है इसका। हाँ क्योंकि उपयोग बार बार क्यों पलटता है, चंचलता के कारण, क्यों चंचल हो रहा है राग के कारण, ऐसे राग की कितनी यहाँ हीनता हो रही है, क्योंकि नहीं समझ में आता फिर हम दोबारा पढ़ते फिर अरे ये ख्याल में नहीं आया था अपने, ये अभी अधिक ये बात नहीं कि हमने पहले पूर्व में पढ़ा नहीं था, कोई बात विशिष्ट वहां जितनी स्ट्राइक होती इतनी पहले नहीं हुई थी, या हुई भी होगी तो फिर वो धारणा में नहीं रही तो चली गई थी। ये तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये कुछ ध्यान नहीं है,
वो बराबर है, पर ये जो हम लोग जो एक ही बारे में सोचते हैं वो वहाँ पे होता होगा।
नहीं नहीं नहीं, वो अलग बात है, वो किसी एक विषय पर बहुत उसी को जान रहा है, वहाँ से बिल्कुल हटना नहीं है उस विषय से। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे हम। ये तो हमने देखा कि ये जो एक्शन एक वाला पॉइंट हमने देखा था, सूक्ष्म सांप्रदायिक का काल, उससे कृष्टि करने का काल जो बीच वाला वंथड़ है वो विशेष अधिक है। देखो फिर मैं पढ़ती हूँ। यह काल चढ़ने वाले के लोग वेदक काल के तीन भागों में से द्वितीय भाग प्रमाण है। चढ़ने वाले की बात की यहाँ पर, क्योंकि चढ़ने वाला ही उसी को उपशामक कहा था, और यह सूक्ष्म सांप्रदायिक के काल से विशेष अधिक है। यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि असिद्ध नहीं है, नहीं सिद्ध है, क्योंकि उपरिम कालों से अधस्तम कालों का विशेष अधिक रूप से अवस्थान देखा जाता है। उपरिम काल यानी पश्चात वाले काल चढ़ने वाले के, और अधस्तम काल यानी उसके पूर्व पूर्व के काल, यानी कृष्टि करण का काल पहले है और कृष्टि वेदक का पश्चात वाला काल है, तो ये पश्चात वाला काल विशेषहीन है, पूर्व वाला काल विशेष अधिक है। अब आगे देखते हैं। पड़िवद मानुगस्त, चढ़ने वाले के लिए उसामगस्त कहा, गिरने वाले के लिए पड़िवद मानुगस्त, बादर सांप्रायस्त लोभ वेदगद्धा संखेज गुणा। गिरने वाले सूक्ष्म सांप्रायिक का लोभ वेदक काल संख्यात गुणा है। यस, बादर सांप्राय ही होना चाहिए, क्योंकि वो दो दो त्रिभागों को मिलकर यहाँ कहेंगे ना। हाँ, मैंने ये सूक्ष्म के बदले बादर करो। गिरने वाले बादर सांप्रायिक का लोभ वेदक काल संख्यात गुना है। अभी हमने जो देखा था 309 देखा था, अब गिरने वाले का ये 309 और 390 मिलकर 699 के बदले 90 भी लेगो, कुछ कम होगा। हाँ, उतरने वाले का भले आप छोटा करके उसको 399 के बदले 390 लिखो ना, फिर भी वो कितना होगा, दो गुना से ज्यादा होगा ना, संख्यात गुना होगा। ये 309 बयान और वो हम ज्यादा कहेंगे उसको, ये 600 और कुछ तो हो जाए, 699 के आसपास हो जाएगा, तो ये तो संख्यात गुना कहेंगे। हाँ, उसमें दो त्रिभाग आएंगे, ये तो एक त्रिभाग लिया, वो 699 हो जाएगा। देखो यहाँ कारण भी लिखा है, क्योंकि पहले का काल यानी 12 नंबर पर जो हमने देखा था उपशामक का कृष्टिकरण काल, जो हमने उसको 309 कहा था, वो एक त्रिभाग मात्र है, और ये दो त्रिभाग प्रमाण है, इन्हें दोनों को मिलकर राउंड अबाउट 699 तो हो जाएगी ना, इस कारण से यह काल संख्यात गुना हो गया है। यद्यपि यहाँ के द्वितीय त्रिभाग से चढ़ने वाले का द्वितीय त्रिभाग विशेष अधिक होता है, तो भी अधस्तन त्रिभाग के विशेष अधिक पने का आलंबन कर यहाँ पर साधिक दुगुनापन सिद्ध करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? चढ़ने वाले का त्रिभाग विशेष अधिक है, यानी यहाँ 309 है, उतरने वाले का हम मान लेते 305 है, छोटा है ना, तो कहते हैं उतरने वाले, और यहाँ 390 है, तो वहाँ उसको भी हम कुछ 380 वगैरह ले लेंगे या 385 ले लेंगे, तो भी क्या कहते हैं 309 से 305 प्लस 385 690 तो हो गए ना, तो 309 से 690 दुगुना से अधिक हो गए कि, तो संख्या दुगुना कहेंगे। थोड़ा थोड़ा कम किया ना हमने इसमें, विशेषहीन है ये, फिर चढ़ने वाले से उतरने वाले का काल थोड़ा कम होता है, फिर भी वो पहला त्रिभाग तो बहुत बड़ा है ना, उसको भी विशेषहीन से भी करके देखे तो भी वो संख्या गुना हो ही जाएगा। यानी वहां हमने 390, 309 और 301 देखे थे, और यहां पर हम मान लेते 380 या 85 ले लो, 305 ले लो, और यहां 300 ही लेना पड़ेगा ना, ना इसमें से कम किया तो वो भी कम ही होगा ना, ऊपर का भी 301 के बदले हम 300 लेते हैं, यानी 309 की अपेक्षा 690 संख्यात गुना हो जाएगा। नहीं, हमने उसको कम करके देखा ना, 309 के बदले 305 लिया उतरने वाले का, और 390 के बदले 385 लिया उतरने वाले का, अब यहीं रुकेंगे हम। ये 13 पॉइंट हुए हमारे अल्पभूत वक्त, बाकी कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान ते सुझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। अश्विन भाई।